एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक अहम किताब पर चर्चा करने वाले हैं, पॉल कोलियर की द बॉटम बिलियन।
हाँ, पूरी किताब का नाम है द बॉटम बिलियन, Why the poorest countries are failing and what can be done about it. और ये किताब वाकई विकास और गरीबी पर हमारी सोच को हिला देती है।
बिल्कुल, ये उन लगभग 1 अरब लोगों की बात करती है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में फंसे हुए हैं,
है ना? एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया के कई हिस्से जैसे चीन, भारत, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ, तरक्की कर रहे हैं।
लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो ना सिर्फ पीछा है बल्कि शायद और भी पिछड़ता जा रहा है।
और ये फासला क्यों बढ़ रहा है, ये समझना आज के समय में जब दुनिया में इतनी उथल पुथल है, मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है।
सही बात है। और कोलियर की खास बात यह है कि वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो जो पुराने तरीके हैं ना समाधान के,
जैसे
कि बस बाजार खोल दो सब ठीक हो जाएगा, या फिर वो पारंपरिक विदेशी सहायता, कोलियर इन पर सवाल उठाते हैं।
अच्छा,
हाँ, वो बताते हैं कि ये तरीके इन खास देशों के लिए क्यों काम नहीं कर पाए और हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत है।
तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं, पॉल कोलियर के विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं।
हाँ, देखते हैं वो कौन से जाल हैं जिनमें देश फंसे हैं, और फिर उन उपकरणों की भी बात करेंगे जो कोलियर सुझाते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत लेखक से करते हैं, पॉल कोलियर।
बिल्कुल। पॉल कोलियर देखिए कोई साधारण अर्थशास्त्री नहीं है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं।
हाँ, सुना है।
और उनका खास काम रहा है अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं पर, और खास करके संघर्ष के बाद, मतलब लड़ाई झगड़े के बाद समाज कैसे उभरते हैं, इस पर उनका काम बहुत माना जाता है।
और ये भी है ना कि वो सिर्फ सिर्फ अकादमिक नहीं रहे, विश्व बैंक में भी काम किया है उन्होंने।
हाँ, यही मैं कहने वाला था। वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर थे वो, तो उनके पास जमीनी हकीकत का भी अनुभव है और ऊंचे लेवल पर नीतियां कैसे बनती हैं उसका भी।
तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक मिला जुला नजरिया है इनके पास।
बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद ये है कि वो किसी विचारधारा से बंधे नहीं है, वो आंकड़ों और सबूतों पर बात करते हैं,
चाहे वो किसी की सोच को चुनौती ही क्यों न दे।
हाँ, भले ही वो वामपंथी सोच हो या दक्षिणपंथी। जैसे वो सैन्य हस्तक्षेप जैसे विवादास्पद मुद्दे पर भी बात करते हैं, लेकिन वो भी रिसर्च के आधार पर, भावनाओं में बहकर नहीं।
और उनकी लिखने का तरीका भी काफी सरल है, सुना है, मुश्किल बातें भी आसानी से समझा देते हैं।
हाँ, जटिल आर्थिक कॉन्सेप्ट को भी आम पाठक या पॉलिसी बनाने वाले लोग समझ सकें, इस तरह लिखते हैं।
चलिए, तो अब आते हैं किताब के मूल मुद्दे पर। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है?
तो किताब फोकस करती है दुनिया के उन करीब 60 देशों पर जहां दुनिया के सबसे गरीब लोग रहते हैं, जिन्हें कोलियर कहते हैं बॉटम बिलियन,
सबसे नीचे का 1 अरब।
हाँ, और उनका मुख्य तर्क ये है कि दुनिया अब सिर्फ अमीर और गरीब इन दो हिस्सों में नहीं बंटी है।
अच्छा।
वो कहते हैं 3 स्तर बन गए हैं। पहला, करीब 1 अरब लोग विकसित दुनिया में। दूसरा, करीब 4 अरब लोग विकासशील देशों में जो तरक्की कर रहे हैं,
जैसे हमारे यहाँ भारत, चीन।
हाँ, बिल्कुल। और फिर ये तीसरा समूह है बॉटम बिलियन, जो इस तरक्की की दौड़ में असल में पीछे जा रहे हैं। और ये विभाजन ये अपने आप में चौंकाने वाला है।
हाँ, ये तो है। तो वो बताते हैं कि ये देश क्यों पिछड़ रहे हैं।
हाँ, वो 4 खास तरह की मुश्किलों की पहचान करते हैं जिन्हें वो जाल या ट्रैप्स कहते हैं, जिनमें ये देश बुरी तरह फंसे हुए हैं,
और फिर समाधान भी बताते हैं।
हाँ, फिर वो इन जालों से निकलने के लिए 4 उपकरण या इंस्ट्रूमेंट सुझाते हैं। तो पहले निदान, फिर उपचार।
ठीक है, तो शुरू करते हैं इन जालों से। पहला कौन सा है?
पहला है संघर्ष का जाल, द कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप। और यह आंकड़ा देखिए कितना कितना डराने वाला है। इन बॉटम बिलियन देशों में से करीब 73% देश,
73%,
हाँ, या तो हाल में गृह युद्ध से गुजरे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं।
बाप रे।
और ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए, गरीबी से हताशा होती है, अस्थिरता आती है,
जो लड़ाई झगड़े को हवा देती है।
बिल्कुल। और फिर वो लड़ाई झगड़ा, वो संघर्ष अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है,
तो गरीबी और बढ़ जाती है।
हाँ, एक दुष्चक्र बन जाता है। कॉलियर बताते हैं कि गृह युद्ध के दौरान देश की इकोनॉमी हर साल औसतन 2.3% सिकुड़ जाती है। सोचिए,
यानी सालों की मेहनत बेकार
एकदम। और इसका असर सिर्फ उसी देश पर नहीं लेता, पड़ोसियों पर भी बोझ पड़ता है, शरणार्थी आते हैं, अस्थिरता फैलती है।
हाँ, ये तो है।
युद्ध की लागत अंदाजा लगाया गया है करीब 64 अरब डॉलर होती है।
ओ
सियेरा लियोन, लाइबेरिया, इन देशों ने इसे भुगता है। कोलियर का मानना है कि शांति और सुरक्षा के बिना आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। ये शायद सबसे बुरा जाल है।
अब आते हैं दूसरे जाल पर। ये थोड़ा अजीब लगता है, प्राकृतिक संसाधन जाल, द नेचुरल रिसोर्स ट्रैप। मतलब जिसके पास तेल हो, हीरे हो, वो गरीब क्यों रहेगा? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए।
हाँ, सुनने में तो यही लगता है, पर यही पीच है। इसी को संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स कहते हैं।
अभिशाप?
ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो है डच डिजीज।
डच डिजीज, ये क्या है?
ये एक आर्थिक स्थिति है। मान लीजिए किसी देश को अचानक बहुत सारा तेल मिल गया,
वो उसे बेचकर खूब विदेशी मुद्रा कमाने लगा।
हाँ, तो ये तो अच्छा है, सुनने में अच्छा है, पर होता क्या है कि देश की अपनी मुद्रा मजबूत हो जाती है, और जब करेंसी मजबूत होती है तो देश के जो बाकी उद्योग हैं, जैसे खेती या कपड़ा बनाना, उनके लिए निर्यात करना महंगा हो जाता है।
अच्छा, क्योंकि उनकी चीजें बाहर महंगी बिकेंगी।
बिल्कुल, तो वो मुकाबले में पिछड़ जाते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था बस उसी एक तेल या खनिज पर टिक जाती है। विविधता खत्म।
समझ गए। और क्या कारण है इस अभिशाप के?
दूसरा बड़ा कारण है शासन और भ्रष्टाचार। सोचिए, अगर सरकार को जमीन से निकले तेल या हीरे बेचकर ही इतना पैसा मिल रहा है,
तो उसे लोगों से टैक्स लेने की क्या जरूरत?
एग्जैक्टली। और जब सरकार जनता के टैक्स पर निर्भर नहीं होती, तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी?
जनता के प्रति कम हो जाएगी।
हाँ, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। वो पैसा विकास में लगने के बजाय नेताओं और अफसरों की जेब में जाने लगता है।
और फिर शायद उन संसाधनों पर कब्जे के लिए भी लड़ाई होती होगी।
बिल्कुल, ये संघर्ष का एक और कारण बन जाता है। यहीं पर अच्छी गवर्नेंस, अच्छा शासन बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे बोत्सवाना का उदाहरण है, उन्होंने अपने हीरो का इस्तेमाल समझदारी से किया।
हाँ, वो तो काफी स्थिर देश माना जाता है।
हाँ, पर दूसरी तरफ नाइजीरिया या अंगोला को देखिए। तेल होते हुए भी सालों तक संघर्ष और गरीबी में फंसे रहे। तो सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है, उन्हें संभालने वाली व्यवस्था भी चाहिए।
अब तीसरा जाल, ये है खराब पड़ोसियों के साथ जमीन से घिरा होना, लैंड वॉक्ड विद बैड नेबर्स। मतलब भूगोल भी एक विलेन बन सकता है।
हाँ बिल्कुल, जो देश चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, जिन्हें समंदर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता,
उन्हें तो व्यापार के लिए पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
हाँ, और सोचिए अगर ये पड़ोसी देश खुद गरीब हों, अस्थिर हों, या वहाँ लड़ाई चल रही हो,
तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
बहुत ज्यादा सामान लाने ले जाने का खर्चा बढ़ जाएगा, व्यापार करना मुश्किल होगा, पड़ोस की अस्थिरता का असर अपने देश पर पड़ेगा।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, जैसे स्विट्जरलैंड को देखिए, वो भी लैंडलॉक्ड है,
लेकिन उसके पड़ोसी अमीर है, स्थिर है,
तो उसे फायदा होता है।
बिल्कुल।
लेकिन अब चाड या युगांडा जैसे देशों को देखिए, वो गरीब और अस्थिर पड़ोसियों से घिरे हैं। उनके लिए तो बाहर की दुनिया से जुड़ना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है।
ये तो वाकई किस्मत की बात लगती है कि आपका पड़ोसी कौन है।
हाँ।
और चौथा जाल कौन सा है?
चौथा है छोटे देश में खराब शासन, बैड गवर्नेंस इन अ स्मॉल कंट्री।
मतलब खराब नीतियां और भ्रष्टाचार तो किसी भी देश के लिए बुरे हैं।
हाँ,
जिटकिन कॉलियर कहते हैं कि छोटे देशों के लिए ये ज्यादा विनाशकारी साबित होते हैं।
ऐसा क्यों?
बड़े देशों पर कम असर क्यों पड़ता है?
देखिए, जो बड़े देश हैं जैसे चीन या भारत, उनके पास अपना एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार होता है,
है ना? हाँ,
है ना?
हाँ।
तो अगर बाहरी दुनिया से व्यापार में थोड़ी दिक्कत भी आ जाए, तो भी देश के अंदर काफी खरीद फरोख चलती रहती है।
ये एक तरह का मतलब सुरक्षा कवच देता है।
अच्छा, छोटे देशों के पास ये नहीं होता, उन्हें टिके रहने के लिए विदेशी निवेश पर, एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है।
और निवेश तो तभी आएगा जब शासन अच्छा हो, नियम कानून ठीक हो, भ्रष्टाचार कम हो, वरना कौन पैसा लगाएगा?
बिल्कुल, यही बात है। अगर शासन खराब है तो निवेशक डरते हैं, वो पैसा नहीं लगाते, तो निवेश रुक जाता है,
जिससे देश और गरीब होता है।
हाँ, और फिर गरीबी के कारण शासन को सुधारना और मुश्किल हो जाता है। ये भी एक जाल ही है।
तो ये थे वो चार जाल, संघर्ष, संसाधन का अभिशाप, खराब पड़ोसी और खराब शासन, जो इन देशों को मतलब नीचे खींचते रहते हैं। अब जरा उम्मीद की तरफ देखें। कोलियर ने इनसे निकलने के लिए चार उपकरण भी बताए हैं। पहला है सहायता, एड, यानी विदेशी मदद। इस पर क्या कहते हैं वो?
उनका नजरिया इस पर काफी बैलेंस्ड है, यथार्थवादी है। वो ये नहीं कहते कि मदद बेकार है,
लेकिन ये भी नहीं कि ये रामबाण इलाज है।
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं सहायता काम करती है, लेकिन हमेशा और हर जगह नहीं।
अच्छा, तो कब काम करती है, कब नहीं?
उनके मुताबिक सहायता वहां ज्यादा असरदार होती है जहां शासन व्यवस्था ठीक ठाक हो। मतलब जहां ये उम्मीद हो कि पैसा सही जगह लगेगा,
ठीक है,
या फिर उन देशों में जो किसी बड़े संघर्ष से अभी अभी निकले हों, जहां दोबारा सब कुछ खड़ा करने के लिए मदद की जरूरत है। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर किसी देश को बहुत ज्यादा सहायता मिलने लगे, खासकर अगर वो उसकी GDP के मान लीजिए 16% से ज्यादा हो जाए,
तो क्या होता है?
तो वो देश उस मदद पर निर्भर हो सकता है, अपनी नीतियां सुधारने की कोशिश कम कर सकता है, और हाँ, भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है।
और वो सहायता सर्कस वाली बात क्या है, एड सर्कस?
हाँ, वो इसकी आलोचना करते हैं कि कैसे दर्जनों विदेशी एजेंसियां, NGOs सब एक ही देश में पहुंच जाते हैं, बिना किसी तालमेल के काम करते हैं।
हाँ, अफरा तफरी मच जाती होगी।
बिल्कुल, कंफ्यूजन फैलता है, असर कम हो जाता है। उनका कहना है कि सहायता स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए, खास लक्ष्यों पर फोकस होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, उस देश की अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। सिर्फ पैसा देना हल नहीं है।
अब दूसरा उपकरण, ये तो काफी विवादास्पद लगता है, सैन्य हस्तक्षेप, मिलिट्री इंटरवेंशन। क्या कॉलियर वाकई ये कह रहे हैं कि बाहर के देशों को फौज भेजनी चाहिए?
हाँ, और ये किताब का शायद सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है। कॉलियर का तर्क है कि कुछ बहुत ही चरम परिस्थितियों में,
जैसे कि
जब कोई देश संघर्ष के जाल में बुरी तरह फंसा हो, वहां की सरकार अपने ही लोगों की रक्षा ना कर पा रही हो या कर ही ना रही हो,
तो
ऐसे में बाहरी सैन्य हस्तक्षेप शायद जरूरी हो सकता है, शांति बहाल करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए।
लेकिन इससे तो वो नव उपनिवेशवाद वाला खतरा, दूसरे देशों के मामलों में दखलअंदाजी, ये सवाल तो उठेगा ही।
हाँ, और कॉलियर इस आलोचना को समझते हैं, वो इसे खारिज नहीं करते। वो सियेरा लियोन में ब्रिटिश हस्तक्षेप का उदाहरण देते हैं, जिसे वो सफल मानते हैं।
क्यों?
क्योंकि उनका मानना है कि उसने वहां के भयानक गृहयुद्ध को खत्म करने में मदद की। वो कहते हैं कि ये कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के सिद्धांत के तहत होना चाहिए।
अच्छा, R2P।
हाँ, वो मानते हैं कि इसमें बड़े जोखिम है, और ऐसा कदम बहुत सोच समझ कर, पूरी अंतर्राष्ट्रीय सहमति से, और बिल्कुल आखिरी उपाय के तौर पर ही उठाना चाहिए।
लेकिन उनका मानना है कि चुपचाप बैठे रहना भी ठीक नहीं है।
हाँ, उनका कहना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और लोगों को मरते देखना भी कोई नैतिक विकल्प नहीं है।
वाकई ये एक बहुत मुश्किल नैतिक सवाल है। खैर, तीसरा उपकरण है कानून और चार्टर, लॉज एंड चार्टर्स। इसका क्या मतलब है?
यहाँ कॉलियर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने नियमों की, संधियों की, और कुछ स्वैच्छिक मानकों की, वॉलंटरी चार्टर्स।
जैसे?
किस तरह के मानक?
जैसे लोकतंत्र के मानक, मानवाधिकार, चुनावों की पारदर्शिता, या फिर खासकर प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई में पारदर्शिता।
तो ये नियम या चार्टर मदद कैसे करते हैं? क्या सिर्फ बना देने से फर्क पड़ता है?
देखिए, सिर्फ बनाने से तो नहीं, लेकिन ये कई तरह से मदद करते हैं। एक तो ये उन देशों के अंदर जो लोग सुधार चाहते हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उन्हें एक आधार देते हैं
अपनी सरकार पर दबाव डालने के लिए।
हाँ, वो कह सकते हैं कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये मानक है, आप क्यों नहीं अपना रहे। दूसरे, ये सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने थोड़ा जवाबदेह बनाते हैं।
कोई उदाहरण है ऐसे चार्टर का?
हाँ, जैसे एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, EITI। ये कंपनियों और सरकारों को प्रोत्साहित करता है कि वो तेल, गैस, खनन से जो भी कमाई हो रही है उसका हिसाब सार्वजनिक करे।
अच्छा, ताकि पता चले पैसा कहाँ जा रहा है, इससे भ्रष्टाचार कम हो सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है, लेकिन इन्हें लागू करवाना, वो असल चुनौती है।
राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी।
बिल्कुल, उसके बिना ये सिर्फ कागज पर रह जाते हैं, पर फिर भी ये एक दिशा तो दिखाते ही है।
और चौथा और आखिरी उपकरण है व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। इस पे क्या कहना है कॉलियर का?
कॉलियर जो मौजूदा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है उसकी कड़ी आलोचना करते हैं।
क्यों, क्या गड़बड़ है उसमें?
उनका मानना है कि अमीर देशों की नीतियां अक्सर इन सबसे गरीब देशों को नुकसान पहुंचाती हैं।
जैसे?
जैसे अमीर देशों का अपने किसानों को भारी सब्सिडी देना, इससे उनके कृषि उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और गरीब देशों के किसान मुकाबला नहीं कर पाते, या फिर गरीब देशों के सामान पर टैरिफ लगाना, टैक्स लगाना,
तो इससे वो अपना सामान बेच नहीं पाते।
हाँ, उनके लिए ग्लोबल मार्केट में घुसना मुश्किल हो जाता है।
तो कॉलियर क्या समाधान सुझाते हैं? क्या वो मुक्त व्यापार के खिलाफ है?
नहीं, वो मुक्त व्यापार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि खेलने का मैदान बराबर तो हो। उनका सुझाव है कि अमीर देशों को इन बॉटम बिलियन देशों से आने वाले सामान के लिए खास रियायतें देनी चाहिए।
किस तरह की रियायतें?
जिससे वो कहते हैं लक्षित गैर पारस्परिक तरजीही पहुंच, टारगेटेड नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल एक्सेस, मतलब इन गरीब देशों के सामान को अपने बाजारों में बिना शर्त आने दें, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री,
और बदले में उन गरीब देशों से कुछ ना मांगे।
हाँ, कम से कम शुरुआत में उन्हें अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए थोड़ी छूट मिले।
इसका मकसद क्या होगा?
मकसद ये है कि ये देश सिर्फ कच्चा माल न बेचते रहें, जैसे सिर्फ कपास न बेचें बल्कि कपड़ा बनाकर बेचें, सिर्फ कोकोआ बीन्स न बेचें चॉकलेट बनाकर बेचें।
अच्छा, वैल्यू एडिशन करें।
बिल्कुल, इससे उनकी अर्थव्यवस्था में विविधता आएगी, रोजगार बढ़ेगा और वो सिर्फ एक दो चीजों पर निर्भरता के जाल से बाहर निकल पाएंगे।
तो ये जो सारे जाल और उपकरण हमने डिस्कस किए, इनसे कुछ बड़े सबक, कुछ मुख्य विषय उभर कर आते हैं। पहला तो मुझे यही लगता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता।
बिल्कुल सही कहा, हर देश की समस्या अलग है, उसका संदर्भ अलग है, तो समाधान भी अलग ही होंगे। कॉलियर यही दिखाते हैं कि न तो सिर्फ बाजार पर छोड़ देना काम करता है, न ही सिर्फ आंख बंद करके पैसा देना।
मतलब विचारधारा से ज्यादा जरूरी है ये देखना कि जमीन पर क्या काम कर रहा है, सबूत क्या कहते हैं।
हाँ, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, व्यवहारिकता जरूरी है।
दूसरा बड़ा सबक मुझे लगता है, सुरक्षा और विकास का गहरा रिश्ता है।
हाँ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, या कहें एक के बिना दूसरा अधूरा है।
जब तक शांति नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी, तब तक आर्थिक तरक्की कैसे होगी? संघर्ष तो सबसे बड़ा दुश्मन है विकास का।
बिल्कुल, और सिर्फ शांति ले आने से भी काम नहीं चलेगा। अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, अवसर नहीं है, तो दोनों पर एक साथ ध्यान देना होगा, सुरक्षा भी और आर्थिक विकास भी।
तीसरा विषय जो बार बार आया वो है शासन का महत्व, और वो संसाधन अभिशाप वाली बात।
हाँ, ये
बहुत जरूरी बात है कि जमीन का खजाना भी मुसीबत बन सकता है अगर उसे संभालने वाली व्यवस्था ठीक ना हो,
अगर गवर्नेंस पारदर्शी और जवाबदेह ना हो।
हाँ, तो वही संपदा भ्रष्टाचार लाएगी, असमानता बढ़ाएगी और शायद संघर्ष का कारण भी बनेगी। हम अपने देश में भी देखते हैं ना, कई बार स्थानीय स्तर पर संसाधनों के प्रबंधन को लेकर चुनौतियां। हालांकि जाहिर है हर जगह का संदर्भ बहुत अलग होता है।
और चौथा विषय है अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का। कॉलियर इस पर काफी जोर देते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि इन सबसे गरीब देशों की मदद करना सिर्फ नेकी का काम नहीं है, ये बाकी दुनिया के अपने हित में भी है।
कैसे?
क्योंकि इन देशों की समस्याएं सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती। अगर वहां अस्थिरता है तो वो फैल सकती है, आतंकवाद को पनाह मिल सकती है, लोग पलायन करते हैं, बीमारियां फैल सकती हैं।
हाँ, ये सब मुद्दे किसी सरहद को नहीं मानते, इसलिए इन देशों को उनके हाल पर छोड़ देना, उनसे मुंह मोड़ लेना, ये बाकी दुनिया के लिए भी, रणनीतिक रूप से भी ठीक नहीं है।
ये सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है।
बिल्कुल।
किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे कोलियर लिखते हैं, असली चुनौती यह है कि सबसे नीचे देशों का एक समूह है जो पीछे छूट रहा है और बिखर रहा है।
हाँ, ये दुनिया के उस नए बंटवारे की तरफ इशारा है कि दुनिया अब सिर्फ अमीर और गरीब में नहीं बल्कि एक तीसरा समूह है जो बाकी सबसे कटता जा रहा है।
एक और बात जो मुझे याद आ रही है, गृह युद्ध विकास की उल्टी दिशा में यात्रा है।
हाँ,
कितनी सीधी और असरदार बात है,
है ना? बिल्कुल सटीक। ये दिखाता है कि कैसे संघर्ष सालों की मेहनत को खत्म कर देता है।
और वो संसाधन अभिशाप वाली बात भी, संसाधन अभिशाप का मूल यह है कि यह लोकतंत्र को खराब कर देता है।
हाँ, ये समझाता है कि कैसे बिना मेहनत का पैसा, मतलब संसाधनों से आया पैसा, सरकार की जवाबदेही कम कर देता है।
और सहायता पर उनका वो नजरिया, सहायता काम करती है लेकिन हमेशा और हर जगह नहीं।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि नीयत अच्छी होना ही काफी नहीं है, तरीका भी सही होना चाहिए। मदद सोच समझ कर, सही जगह पर, सही तरीके से होनी चाहिए।
अब अगर हम सोचें कि ये सब बातें ये एक आम नागरिक के लिए क्या मायने रखती हैं, कोई कैसे जोड़े इसे अपनी जिंदगी से?
मुझे लगता है सबसे पहले तो ये किताब हमें दुनिया को, खासकर वैश्विक खबरों को, एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है।
कैसे?
जैसे जब हम टीवी पर किसी अफ्रीकी देश में या कहीं और हिंसा या गरीबी की खबर देखते हैं, तो हम शायद अब सिर्फ सतही तौर पर नहीं सोचेंगे, हम सोच सकते हैं कि कहीं ये देश कॉलियर के बताए किसी जाल में तो नहीं फंसा। क्या वहाँ संघर्ष चल रहा है? क्या वहाँ संसाधनों की लूट है? क्या वहाँ का शासन ठीक नहीं है?
हाँ, मतलब खबरों के पीछे के कारणों को समझने में मदद मिलती है।
बिल्कुल। और शायद जब हम दान देने के बारे में सोचते हैं, किसी चैरिटी को सपोर्ट करने के बारे में,
तो हम ज्यादा जानकारी वाले सवाल पूछ सकते हैं।
हाँ, कि ये संस्था क्या सिर्फ फौरी राहत दे रही है, या वो लंबे समय के समाधानों पर काम कर रही है, जैसे संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में मदद करना या शासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश करना।
ये समझने में मदद मिलती है कि किस तरह की मदद शायद ज्यादा असरदार होगी।
सही कहा। और जो लोग नीतियां बनाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अहम है।
हाँ, उनके लिए तो ये सीधी सीधी गाइडेंस जैसी है।
हाँ, ये किताब उन्हें याद दिलाती है कि हर देश अलग है, हर चुनौती अलग है, तो नीतियां भी उसी हिसाब से बननी चाहिए, चाहे वो व्यापार नीति हो, विदेशी सहायता हो या सुरक्षा से जुड़े मामले हों।
जैसे हमारे देश के लिए भी, भारत के लिए अपने पड़ोस में स्थिरता कितनी जरूरी है, ये बात और साफ हो जाती है।
हाँ, क्योंकि पड़ोस में अस्थिरता का असर तो हम पर भी पड़ता है, व्यापार पर, सुरक्षा पर, हर चीज पर।
तो इस पूरी चर्चा से अगर मुझे एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो ये है कि इन बॉटम बिलियन देशों की समस्या सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये बहुत गहरी है।
हाँ, ये सिस्टम की समस्या है, गवर्नेंस की समस्या है, ये गहरे संरचनात्मक जाल हैं जिनसे बाहर निकलना अकेले उन देशों के बस में शायद नहीं है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि इन उलझी हुई जटिल समस्याओं का कोई आसान सीधा साधा हल नहीं है।
नहीं है।
हमें हिम्मत दिखानी होगी, पुराने तरीकों से हटकर सोचना होगा और कई मोर्चों पर, सुरक्षा, शासन, व्यापार, सहायता, सब पर एक साथ काम करना होगा।
हाँ, कोई एक जादुई छड़ी नहीं है, व्यावहारिकता चाहिए और शायद थोड़ा साहस भी।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो कॉलियर के विश्लेषण से ही उठता है। क्या दुनिया के इन सबसे गरीब 1 अरब लोगों के प्रति हमारी उदासीनता, मतलब उनसे आंखें फेर लेना, क्या ये उदासीनता उन विवादास्पद लेकिन शायद जरूरी कदमों से भी बड़ा खतरा तो नहीं है जिनकी बात कॉलियर करते हैं, जैसे कि बहुत जरूरत पड़ने पर बाहरी हस्तक्षेप? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।